If there anyone has no honor,
विवेक गोस्वामी का भी ऐसा, जितने भी ऋषि महर्षि है ऐसा ही। इसी प्रकार से उस धन से पाए जाने वाले, जिस धन की ये स्थिति है,
आलस्य प्रमाद निद्रा इत्यादि सब को लेकर के आती है। तो पहले वो ऐसे करके बैठेगा, फिर ऐसे बैठेगा, फिर एक पैर इधर कर देगा, फिर जम भाई आ जाएगी, और इसके बाद में कथा कहाँ गई कुछ पता ही नहीं, भागवत उनका सुनना हो गया। तो फिर उनकी भागवत कथा नहीं सुननी हुई। इसलिए सावधानी के साथ में ये कथा सुननी चाहिए। देखो, एक बहुत बड़ा भारी धनी आदमी था, अरबोंपति करोड़ोंपति था वो, स्वर्ण मुद्राएं हीरा जवाहरात सब उसके पास में थे। लड़का बहुत छोटा था, एक ही लड़का उत्तराधिकारी, और उसकी मृत्यु होने लगी तो अपने किसी सखा को, अभिज्ञात नाम के किसी सखा को बुला करके कहा कि भाई देखो, मेरा बच्चा तभी छोटा है, तो तुमको बतला देता हूँ, मैं इस घर के आंगन में के पूर्वी तरफ में मैं धन रत्न इत्यादि सब कुछ गाड़ करके जाता हूँ। बच्चा तो समझेगा नहीं, इसलिए जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाए तब फिर उसको तुम बतला देना और उसकी सहायता कर देना, जिससे कि वो फिर मरे नहीं, निर्धन न हो, धनी जैसा पता चलता रहे। ठीक है, ये कह करके उसकी मृत्यु हो गई और अभिज्ञात सखा भी कहीं चला गया। कुछ दिनों के बाद में, 15-16 वर्षों के बाद में उसका बच्चा बड़ा हुआ, घर में खाने के लिए नहीं, एक पैसा भी नहीं, परम निर्धन हो गया वो, बिल बिलाने लगा, कोई मांगने से भी नहीं देता उसको कुछ। एक दिन वही अभिज्ञात सखा उसका आया, अरे बेटा तू खाने पीना मर रहा है, तुम तो निर्धन नहीं है, तुम तो अरबपति है, आप मुझे क्यों चिढ़ा रहे हैं, मैं तो दरिद्र हूं, एक दाने अन्न के लिए मर रहा। कहे नहीं तो ऐसी बात तो नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी बहुत अगाध संपत्ति रख करके गए हैं और तुम्हारे घर में ही है तुम धनी, किंतु तुमको पता नहीं है। तुम यदि आसानी से उस चीज को वहां से निकाल लो तो बस उसी दिन रातों रात ही तुम अरबपति करोड़पति बन जाएगा। काजी सिंह मेरे घर में और मुझे पता नहीं, कहां ऐसी बात है, वो हमारे मित्र तुम्हारे पिताजी, उन्होंने मुझे बतलाया था, मैं जानता हूं। जी कहां है, यदि नहीं बतलाए, वो कहते हैं यदि मैं नहीं बतलाऊं और तुम खोदो, यदि तुमने पश्चिम घर के पश्चिम की तरफ में खोदा, अजगर सर्प बैठा है, तुम्हें तत्क्षणात दस देगा, तू मर जाएगा, धन भी नहीं मिलेगा, मरेगा। यदि दक्षिण की तरफ तुमने किया तो वहां पर यक्ष बैठा है, तुम्हारे समस्त परिवार को मिनटों में वो समाप्त कर देगा। यदि तुमने उत्तर की तरफ में खोजा तो वहां पर बहुत से बर्रे भीमरू माने ततैया लाल लाल वाले होते हैं, यदि किसी ने खोद दिया ना तो जितनी दूर दौड़ोगे वो पकड़ करके जरूर काटेगा। और वो यहीं पर बैठता है, अभी यहीं पर डसता है, मुख फुला देगा, गाल फुला देगा और हजारों एक साथ में पकड़कर तुम्हें मार डालेंगे। यदि रास्ता मालूम नहीं है, घर में भी वह चीज सारी संपत्ति है और उल्टा टूटा कहीं छूट गया तो तुम मरे जाओगे। चलो मेरे साथ में पूरब की तरफ में ले गया, बस थोड़ा सा खोदना है, आसानी से तुमको मिल जाएगा। बस पूरब दिशा में लेकर के घर के भीतर में और उसने थोड़ा सा खोद दिया और उसने लाखों करोड़ों के अरबों खरबों जवाहरात हीरा और ये सब मिल गया और विराट धनी हो गया। अभी हम लोगों ने दशम संतों की कथाएं सुनी, वो सीधा रत्न अमूल्य रत्न है सब, किंतु कहां छिपा हुआ है ये सब? रास्ता नहीं मालूम होने से सब छिपा हुआ है, किंतु रास्ता मालूम नहीं। आजकल के पंडित लोग, अधिकांश लोग रास्ता नहीं जानते, भागवत को बेच देते हैं कुछ पैसों के लिए, वो हो गया पश्चिम के तरफ, उन्हें वो सर्प डसेंगे, अर्थात उसको तो वो चीज तो मिलेगी नहीं बल्कि उससे अपराध होकर के और मरेंगे। यदि दक्षिण की तरफ में खोदा, कर्म ज्ञानी होकर के भगवान की भक्ति से, भागवत की कथा से धन जन पुत्र इत्यादि ले लिया तो तब से उसी में रमते रह जाएंगे, 84 लक्ष की जोनियों में भ्रमण करते हुए अनंत जन्म उसमें। यदि भागवत की कथा दूसरे रूप में हमने सुना, ज्ञानी होकर के इससे मुक्ति मिल जाएगी, तो वो दक्षिण दिशा है। मुक्ति के लिए खबरदार, ये भागवत मत सुनो, बस भगवत प्रेम के लिए, गोपियों के प्रेम के लिए सुनो, ये पूर्व दिशा है। अब ये पूर्व दिशा का निरूपण करने के लिए 9 जोगेंद्र आ रहे हैं और वसुदेव महाराज जी से बड़े सीधे साधु शब्दों में इस सब का बड़ा सुंदर वर्णन किया। मैं समझता हूं उसी समय में सब लोग, अधिकांश लोग सो रहे थे। कथाओं के समय में तो रुचिकर होता है, सुन लेते हैं, किंतु जब रास्ता बतलाने लगे ना तो उसी समय सो गए तो वो धन संपत्ति मिलेगी कहां से? इसलिए सब कथा सुन करके एकादश और द्वादश कथाओं के श्रवण में जहां पर कि वो बतला रहे हैं और उसी समय में सो गए तो रास्ता मालूम हुआ, जहां का तहां वो दबा रह गया, न धन मिला, न संपत्ति मिला, न कुछ भी नहीं मिला, उल्टे सर्प यक्ष और विभिन्न जोनियों में जाकर के और उसी में रह गए और ये धन से वंचित रह गए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि एकादश स्कंद जो है वो भगवत कृपा और ये लीलाएं जितनी है चिंतामणि, उसको पाने के लिए अभी रास्ता बतलाया। वो रास्ता क्या बतलाया संक्षेप में, यदि किसी से पूछू ना तो गड़बड़ हो जाएगा, मन सबका खराब हो जाएगा, क्योंकि मन से सुना नहीं तो इतना सुन करके सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मत करो भाई। ये एकादश और द्वादश स्कंद रास्ता बतला, वो रास्ता क्या बतला फिर से मैं 2-4 शब्दों में मैं बतला दूंगा, इसके बाद में कीर्तन और आरती होगी। बतलाया कर्मण्यारभमानानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत पाप विपर्यासं मिथुनीचारिणां। सब लोग दुख दूर करना चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, सभी लोग सुख चाहते हैं, किंतु उसके लिए जो उपाय अवलंबन करते हैं उससे तो कभी दुख दूर होता भी नहीं है और न सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि जो जो काम सुख के लिए करते हैं वही दुख का कारण बन जाता है। जैसे विवाह किया, सबके लिए मैं नहीं कह रहा, अधिकांश ऐसा ही होता है, इसलिए आप लोग सावधान रहेंगे इन सब विषयों में। तो लोग विवाह करते हैं, विवाह करते हैं, विवाह होने के बाद में लड़का लड़की नई संपत्ति उत्पन्न हुई, कहते हमारा घर सब सुना हो गया, बेकार। पहले तो शादी नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से शादी हुई। शादी होने के बाद में जब लड़का नहीं हुआ तो भी मन बड़ा दुखी रहा। अच्छा, एक के बदले में 10 लड़के हुए, बड़े सभी गुणवानी गुण वाले, और वो लोग भी वाणिज्य व्यवसाय इत्यादि में सभी बड़े अच्छी तरह से हुए। 15-16 वर्ष की अवस्था तक जब तक कि हमने उनका पालन पोषण किया, और जब तक शादी नहीं थी तब तो खूब आदेश मानते हैं सभी लोग। बहुएं भी आ गई, अब बहुएं तो बड़ी होंगी, लड़के भी तो बड़े होंगे। वो अब 30-35 वर्ष के, 40 वर्ष के हो गए, उनकी भी तो कुछ स्वतंत्रताएं हैं। अब वो अपने स्वतंत्रताओं को उपयोग करने लगे, जैसे कि पिताजी और माताजी करती थी। अब ये क्या हुआ, अब घर में विरोध बढ़ने लग गया। लड़के पिताजी का आदेश नहीं मानते। अब वो जो शादी की थी बच्चों की और पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अब वो तो दुख का कारण बन गया। अंत तक जब देखते हैं कि ये आदेश हमारा नहीं पालन करते, जो अभी अभी छोटी सी बच्चियां हैं उनके लिए भी ऐसा ही समय आएगा, जो विवाहित अभी किशोर किशोरी हैं, नवयुवक युवक, उनके लिए भी यही आएगा। अरे उनको तो छोड़ दो, आजकल शिष्य नामधारी साधक भी अपने गुरु की बात नहीं मानता। 2-4 श्लोक उसको याद हो गए, साधन भजन करने की कोई जरूरत नहीं। पक्के जो गाल बजाना सीख लिया वो बड़े पंडित हो गए। इसी तरह से ये कलयुग का वर्णन अंत में आया है, ये सब आएगा। इसलिए कहते हैं जो जो भी कर्म करो, आज संयुक्त राष्ट्र में जितने विश्व के मनुष्य हैं वो सब एकत्रित होकर के विश्व में शांति हो, कल्याण हो, ये चाह रहे हैं, और उसके लिए चेष्टा चल रही है। किंतु वो चेष्टा नहीं करते जो करनी चाहिए। निंदा किसी की मत करो, ये कर रहे हैं सब। चोरी मत करो, अपने माता पिता गुरुजनों की बात को मानो, उनको यथायोग्य सम्मान दो, ये सब करते हैं। सर्वपरि आस्तिक होकर के भगवान का भजन करते हुए ये सब करो, तो होगा कहां से। अभी अमेरिका इत्यादि दूसरों राष्ट्रों पर दबाव देता है, किस लिए, अपने स्वार्थ के लिए, दूसरे देशों के उपकार के लिए नहीं। उसी प्रकार सबका समझो, सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं। ऐसे स्वार्थपूर्ण होकर के जितने भी कर्म करेंगे उससे अशांति बढ़ेगी, कभी भी शांति नहीं हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कर्मणि आरोहमानानां दुःखाय तैः सुखाय च। वो सुख के लिए जो काम करते हैं, विवाह शादी धन वाणिज्य व्यवसाय, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से मधुमक्खी ने अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, वो भी जाड़े के दिनों में वर्षा के लिए मधुमक्खी रस एक एक फूलों से लेकर के छत्ता बनाई, और दुष्ट बंदरों ने, और दुष्ट वो जो हैं वो जाते हैं ना बहलिए इत्यादि, वो सब पहुंचे और उनको गंध लग गई, मुख से पानी गिरने लगा बंदरों के और उनके भी, और उन्होंने जाकर के नीम के पत्तियों से झाड़ दिया, या मंत्र भी जानते हैं झाड़ दिया, वो सब जैसे के तैसे रह जाएंगे। और उनको छत्ते को उतार कर अपने कपड़े में बांधकर और खूब जोर से ऐंक दिया, मधु तो आया ही और मधुमक्खियों का सारा जितना रस था प्राण के समय सब आ गया। और मधुमक्खी ने बनाया किस लिए छत्ता था, मैं सुख से अपने बाल बच्चों के साथ में खाऊंगी, कब खाऊंगी, जाड़े के दिनों में बैठ करके आराम से। और हो क्या गया, बाल बच्चे समेत सब कुछ। इसी तरह से भाइयों बतला रहे हैं, यदि सचमुच में तुम शांति और सुख चाहते हो तो क्या कहते हैं, नित्यार्दिन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृहापत्य आप्त पशु भी का प्रति साधित चलई। ये पैसा है नित्यार्दिन, अर्थ जो है कमाने के समय, घर में रखने के समय और खर्च होने, तीनों समूह में ही आर्थिक को देने वाला है। कहते कैसे, चोरी डकैती बदमाशी कर करके, जहां तक हो जहां तक के एरोप्लेन में जा रहे हैं धन कमाने के लिए और एरोप्लेन गिर पड़ी, बस मर गए ना, कोई जीवन का ठीक नहीं। एक पैर मृत्यु के पैर में रखकर और हम धन का कमाते हैं, न जाने कहां से क्या क्या करके। धन कमाना सहज ही नहीं है भाई, जो धन कमाते हैं वो समझते हैं, बेटे तो आ जाते हैं ना सहज ही खर्च कर देते हैं, वो नहीं समझते। किंतु जिसने धन कमाया है वो धन जो समझता है, जो धन का क्या गरिमा है और कैसे धन कमाया जाता है कष्ट से ने? लड़के नहीं समझते, वो पानी की तरफ में बहा देते हैं। तो कहते हैं ये कमाने में भी घर में रखा और किसी प्रकार से डकैतों को पता लग गया। अभी मथुरा नवद्वीप में हम लोगों के मठ के पास ही बैंक से 10,000 रुपया निकाल करके ले आए एक सज्जन मठ के पास ही, और किसी प्रकार से बैंक के कर्मचारियों से ही उन डकैतों का कुछ लिंक रहता है, उन्होंने उसको खबर दे दी। घर में लेकर के रात में रखा, ठीक 10:30 बजे के हो हल्ला, हम लोग अपने छतों पर मठ के देख रहे हैं, 10-12 आदमी आए बंदूक इत्यादि लेकर के और घर के तालों को तोड़ करके और सब लोगों को मार पीट कर एक आदमी को दो आदमी को जान से मार दिया और वो सब कुछ लेकर के चले गए। रखना भी सहज नहीं है, यदि किसी के पास में कुछ हीरा जवाहरात इत्यादि रखा हो और मालूम पड़ जाए किसी को तो देखो बचना बड़ा भारी असंभव हो जाएगा, इसलिए उसकी रक्षा करने में भी। और यदि किसी प्रकार से नष्ट हो गया, एक हमारे परिचित आदमी थे, उनको शायद 10-20 लाख रुपया बैंकों में जमा था, अभी 2-3 वर्ष पहले कुछ बैंक सब समाप्त हो गए थे, गवर्नमेंट ने उनको ये कर दिया था, कैंसिल कर दिया या कुछ हो गया, उनका सारा रुपया एक बैंक में जमा था, वो सब एकदम पागल हो गए और कुछ देर के बाद ही मर गए। तीनों अवस्थाओं में जो है, अब उन ऐसे जो नित्य आरती को देने वाला जो धन संपत्ति है, यदि भगवत सेवा में किसी शुभ कर्म में लगाया जाए तब तो ठीक है, जैसे आज यहां पर भागवत की कथा हो रही है, ये रुपयों का सदुपयोग है, किसी गरीब आदमी को दिया, भगवान का प्रिय है, भविष्य सभी लोग भगवान के सेवक है ऐसा समझ करके जरूरतमंद है उनको दिया गया, अच्छे अच्छे कर्मों में उसे लगाया, तब तो वो कुछ गड़बड़ी नहीं करेगा, और नहीं तो वो रुपया उस रुपये से जो कुछ भी आप लाएंगे वो तो मूल में तो वो रुपया आरती दत्त है ना, इसलिए जो जो भी कर्म करेंगे उसके द्वारा घर महल बनाया और कराया। घर महल जब बनाया अब लड़के उसी के लिए लड़ेंगे, पिताजी ये हमको मिलना चाहिए, वो हमको मिलना चाहिए, वो हमको मिलना चाहिए, ये संपत्ति मुझको मिलनी चाहिए, बस और भी लड़कर से मरेंगे, पिताजी को भी तो कष्ट देंगे अपने भी मरेंगे। इसलिए कहते हैं नित्यादेन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना, इससे आत्मा की मृत्यु हो जाती है। भगवत भजन तो करते नहीं, फिर उससे प्राप्त होने वाले उन अर्थों से गृह आपत्य गाय पशु भी इत्यादि बाग बगीचे ये सब आरती के कारण है। इसलिए देखो भाई, तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेशा निष्णातम ब्रह्मण्य उपसमासम, ये सबका सार ये बतला रहे हैं, नौ जोगिंद्र बतला रहे हैं, नैनी महाराज जी को बतला रहे हैं और यही नारद जी बतला रहे हैं वसुदेव महाराज जी को, और सुखदेव गोस्वामी ने हम लोगों के लिए कहा अभी हम लोग आप लोगों को कह रहे हैं और अपने लिए भी हम कह रहे हैं, आप ही लोगों के लिए नहीं अपने लिए भी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं तस्मात, इसलिए प्यारे भाई जिनको थोड़ी सी भी बुद्धि है, जो लोग बुद्धिमान हैं वो लोग तस्मात गुरु प्रपद्येत, गुरु का के आत्मसमर्पण किस लिए, उत्तम वस्तु को जानने के लिए, भगवान के लीला चरित्रों को और अपने लिए कल्याण के लिए जो पहले बतलाया है दशम स्कंध तक उसको प्राप्त होने के लिए, भगवान की प्रेमा भक्ति गोपियों के चरणों में अनुरक्ति कैसे होगी, इसको जानने के लिए सद्गुरु का पदाश्रय करो। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयः उत्तमं शाब्दे, ऐसे गुरु हों श्रीमद् भागवत में के कुछ कुछ जानने वाले, भक्ति के द्वारा, बुद्धि टीका इत्यादि के द्वारा नहीं, गुरु के माध्यम से उन्होंने सब गुरु परंपरा के माध्यम से जो भागवत को श्रवण किए हैं उनके, और जो उनकी अनुभूति कुछ है और संसार से कुछ वैराग्य भी है, दिखलाने के लिए नहीं, यथातथ में वैराग्य है, और उनसे भगवत धर्म की शिक्षा लाभ करें। कैसे भगवान को पाया जा सकता है, भगवान ने इसमें बतलाया है, मैं तुमको अपने पाने के लिए ऐसे उपाय बतला रहा हूं, आंख बंद करके भी उन उपदेशों पर जो चलेगा, दौड़ता हुआ भी चले और जहां पैर रखना चाहिए वहां नहीं भी रखे वो गिरेगा नहीं, ऐसा पद तुमको बतला रहा हूं। वो क्या है अभी बतलाया, श्रीमंत भद्राणी रथांग पाए, भगवान का नाम ग्रहण करो, गोविंद दामोदर माधवे उदुखले संभृत तंदुलांश संघंटयंतो मुसलई प्रमुद्धा गायन्ति गोप्या जनतानुरागा गोविंद दामोदर माधवे। ऐसे सब नामों को प्रेम पूर्वक करो, गुरु जी से ये शिक्षा लेनी है, इस ऐसे नामों को गुरु पदाश्रय करके शोक मोह भय सबको दूर कर, अभी अकर्म विकर्म और कर्म बतलाया इनको भी छोड़ करके, निष्काम कर्म कभी छोड़ो इसकी भी जरूरत नहीं, भगवत अर्पित कर्म इसको भी छोड़ो, कृष्ण के लिए सब कुछ करो, कृष्ण प्रीति के लिए, कृष्ण को सुख हो ऐसा करो, देखो जो अपने आप भगवान मिल जाएंगे, बैठे हुए गोष्पद की भांति समुद्र को भी तर जाएंगे और भगवान भी अपने अपने उसके पीछे पीछे चलेंगे। कैसा भक्त है उसकी चरण की धूली उड़ करके हमारे ऊपर में चल लग जाए, ऐसे भगवान भी उसको खोजते हैं जैसे गोपियों को खोज रहे थे। ये भगवत धर्म का रहस्य है, यदि इस पर हम लोग चलेंगे, और भी बहुत लाया, समय की कमी है, तब यही समझिए, संसार में रहिए, कर्तव्य कर्म कीजिए, माता पिता गुरुजनों का आदर कीजिए, सम्मान करना सीखिए, ये एक स्कूल है ये जगत, यदि आपने उन लोगों का ही आदर नहीं किया, माता पिता गुरुजन और सब लोगों का, तो भगवान का कहां से सम्मान करेंगे। इसलिए ये धर्म से यहीं से सीखिए, फिर इसमें अनासक्त होइए, मीठी वाणी बोलना सीखिए, जैसे कृष्ण बोलते हैं, गोपियां जैसे मीठी बोली बोलती हैं, कपटता मत रखिए, आसक्त मत होइए संसार में मधुमक्खी की भांति, इस प्रकार से रह करके भगवान के प्रिय होने वाले जो उसमें भी कार्य हैं, और उन सब में भी श्रेष्ठ है भगवान नाम कीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम अयो केवल कलौ नास्तेव 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 कतिर न अस्ति एव, तीन बार कहा, खैंक दिया लकीर, पत्थर की लकीर, ब्रह्मा की लकीर खैंकी, इसके अतिरिक्त और कोई कल्याण का उपाय नहीं। इसलिए हम लोगों को इस प्रकार से चलना चाहिए, इन उपदेशों को पालन करेंगे तो रास्ता मिल जाएगा, इसलिए एकादश स्कंध रास्ता है, रास्ता सुना नहीं और धन की बातें तो सुन ली और उस पर अमल नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इन पर उपदेश करने के लिए उपदेशों को कह रहे हैं, हम इस पर धीरे धीरे पाल, हरि नाम का करना क्या इसमें कठिन है, भगवान नाम एक तरफ तो भगवत प्रेम बहुत दुर्लभ है और दूसरे तरफ में उसका पाना बहुत ही सरलता है, चलते फिरते उठते बैठते, दिवा नहीं, रात्र नहीं, कोई विचार नहीं है, पवित्र नहीं है कि अपवित्र है, मैं मर रहा हूं, मुझे टट्टी निकल रही है, पेशाब हो रहा है, अरे तो भी भगवान का नाम करो ना, तभी तो हो जाएगा, पवित्रता की कोई जरूरत नहीं। एक तेली था, दिन भर तेल फेरता था, कल्लू पर बैठकर और बैल के आंखों में वो लगा करके
कपड़ा
फूली बांध करके और चलाता, हट 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 बीच बीच में करता जाता और उस पर चढ़ करके दिन भर। एक दिन कोई व्यक्ति मिल गया, अरे देखो दिन भर रात भर ये चलाता है, हट 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 करता है, अरे कभी भगवान का एक बार भी तो नाम ले ले, कभी क्या कहूं, बड़ी मुश्किल है, मुझको समय नहीं मिलता, दिन भर इसमें काम रहता हूं, फिर मुझे नींद आ जाती है, खा पी करके सो जाता हूं, फिर उठता हूं और फिर मैं इसमें लग जाता हूं, मुझे समय नहीं मिलता। अरे तुमको समय नहीं मिलता, टट्टी पेशाब के समय में क्या करता है, तो उस समय में लिया जा सकता, हाँ हाँ ले लो कोई बात नहीं। वो बेचारा रात के समय में अपने कल्हू को विराम दे करके लोटे जा ले करके जंगल में चला और वहां जा करके टट्टी पेशाब में बैठ गया और राम 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 था। जहां जहां पर हरि नाम होगा हनुमान जी सबसे पहले वहां जरूर पहुंच जाएंगे, करोड़ों करोड़ों उनके मुंह, करोड़ों करोड़ों पैर, करोड़ों करोड़ों जीवाएं से वो भगवान का नाम करते हैं, जहां जहां कोई करेगा वहां पर पहुंच जाते हैं। बस जहां राम राम किया पैखाना करते समय अब हनुमान जी पहुंच गए, बदमाश तेली तो अशुद्ध खबर, समय टट्टी करते हुए भगवान का राम राम कर रहा और तुमको समय नहीं मिला, एक उठा करके एक लात मारा, जिस लात को पाकर रावण और कुंभकर्ण गिर गए और मुक्की खा ली और इसको कुछ भी नहीं हुआ, राम 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 कहता रहा। समझ गए बड़ी विचित्र बात, तो मैंने रावण को मारा, कुंभकर्ण और बड़े लोगों को मारा, वो एक थोड़े से में हवा में ही गिर पड़े और इसको इतनी जोर से लात मारी, इसका कुछ नहीं हुआ, बड़ी चिंता में रहे। थोड़ी देर के बाद में राम, शाम हो गई, शाम होने पर रात हो गई, रात होने पर प्रभु जी के पास में राजभवन में पहुंचे जहां पर रामचंद्र जी भी विश्राम करते हैं और उनके ये पैर पर लौटते हैं। वहां जाते ही सुना दरवाजे पर रामचंद्र कर रहे, अरे भाई ये क्या हुआ, आज तक तो इनको मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े, प्रभु आज आप आह मुंह कैसे कर, आज तुमने ऐसी जोर से मुझे लात मारी और फिर कह रहा है जो किस लिए आह मुंह कर रहे हैं, मारा भी और ऊपर से ऐसा कह भी रहा है, तो प्रभु मैंने कब कहा, अब मैं जन्म में कभी कल्पना कर सकता हूं ये आपको मारूंगा, मैं कभी भी नहीं, तो तुम ही नहीं तो हमको मार, तो कब मारा, अरे ये तो समझो नाम और नामी अभिन्न है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, हमारे नाम में और नामी में अंतर है। जैसे आपने अपने अंधे पुत्र का नाम रख दिया कमल नयन, नयन सुख राम रख दिया, एक बहुत दरिद्र आदमी है उसका नाम रख दिया कुबेर, कुबेर शर्मा, कुबेर खंडलवाल नाम रख दिया है और है वो दरिद्र, इसलिए नाम और नामी में यहां पर भेद है। किंतु भगवान के नाम में राम और राम नाम में, कृष्ण और कृष्ण नाम में दोनों अभिन्न है, एक पहलू पे दो सिक्के भी नहीं, एक सिक्का का दो पहलू एक इधर उधर होता है ना, भगवान और नाम में और उनमें यह भी अंतर नहीं है, बल्कि नाम नामी से बढ़कर, नाम नामी से बढ़कर के दोनों एक हैं, जहां नाम आया भगवान नाम वहीं पर कृष्ण और राम वहां पर पहुंच जाते हैं। इसलिए जो ही उसने टट्टी के समय में भी राम राम कहा, मैं उसके पास में पहुंच गया और तुमने उसी समय में लात जड़ दी और मेरी कमर टूट गई, पटली हार दी, इसलिए मैंने सब गलती की, फिर उनको ठीक किया, बड़ी सेवा करने लगे। हनुमान ने कान पकड़ा, जी आज से ऐसा नहीं करूंगा, चलते फिरते उठते बैठते छींकते अंततः मरने के समय में भी यदि किसी को टट्टी पेशाब भी हो रहा हो उल्टी हो रही हो, उस समय भी भगवान का नाम ले तभी उसका कल्याण हो जाता है। ऐसी नाम की महिमा है। ऐसे नाम को लेने में क्या परिश्रम है भाइयों, सब एक बात है। यदि गुरु प्रदाश करके यदि वो नाम होगा तो सहज ही में हो जाएगा, और नहीं तो कुछ भूले भटक जाएंगे हम लोग। ऐसे नाम करना पहिया होता है। पहिया मैंने समझते हैं, धान दो प्रकार के होते हैं, एक चावल युक्त और एक होता है देखने में धान किंतु भीतर में चावल नहीं होता है, उसको भूसी भी कह सकते हैं। जहां हवा से उड़ाया ना तो वो तो उड़ जाएगा जिसमें कि चावल नहीं है, और जिसमें चावल है वो भार होकर के देखने के लिए। शब्द ब्रह्म होता है सब, और एक होता है शब्द सामान्य, एक शब्द साधारण और एक होता है शब्द सामान्य। जो लोग स्वयं भगवान नाम करते हैं और उनके हृदय में प्रेम से भगवान का नाम अपने आप आ जाता है वो नाम शब्द ब्रह्म है ना? और जो नाम ऐसे ही जहां तहां सुन लिया कल्याण में, भाई हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, ये लिखा हुआ आप लोग करना और इसको लिखना, करने की जरूरत है लिखना, कागज खरीद लाओ और उसमें लिखो हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, और फिर लिखने के बाद में कहां ले जाएगा, कहां रखेगा।